रिसेप्शन पार्टी में थकने के कारण गौरवी जी रेस्ट करने के लिए कबीर के साथ ऊपर रूम में जा रही थीं। ऊपर अपने रूम में जाते हुए उनकी मुलाकात छवि सिंघानिया से हुई। छवि थी उनसे बात करना चाहती थी, इसलिए वो गौरवी जी के पास आ गई। गौरवी जी ने इशारे से कबीर को उनसे थोड़ा दूर खड़े होने को कहा। कबीर के साइड होते ही छवि सिंघानिया गौरवी जी के पैर छूने लगी तो गौरवी जी कुछ कदम पीछे हट गईं। उनके चेहरे के भाव सख्त थे। उनके पीछे हटने का छवि पर कोई असर नहीं हुआ। वो ऊपर उठी और बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मम्मी जी, आप मुझे अब तक माफ़ नहीं कर पाई हैं? भले ही मैंने आपके बेटे को छोड़ दिया हो, लेकिन एक माँ होने का फ़र्ज मैंने बहुत अच्छे से निभाया है। तुम जैसी घटिया लोगों के मुँह से माँ शब्द भी अच्छा नहीं लगता। खुद भी अच्छे से जानती हो कि तुमने कौन सा फ़र्ज़ कितने अच्छे से निभाया है, गौरवी जी गुस्से में बोली। उनकी आंखों के सामने एक एक करके वो सारी यादें ताज़ा होने लगीं कि कैसे छवि सिंघानिया ने आरव और उनके बेटे अनुराग को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जाने भी दीजिए, 20 साल पुरानी बातों को लेकर अब तक कौन नाराज़ होकर रहता है, छवि ने जवाब दिया। फिर उसने कबीर की तरफ देखकर कहा, लगता है आरव के साथ काम करते हुए तुमने अपनी माहिरा मैम को छोड़ दिया है। उसे शादी का पता चला तो वो तुम्हारे साथ साथ आरव की भी जान लेगी। अगर उसे पता नहीं है तो मैं उस तक ये खबर पहुंचा सकती हूँ, छवि अब कबीर से बात कर रही थी। कबीर अच्छे से जानता था कि आरव पहले ही माहिरा को सब कुछ पता चुका है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस भरी मुस्कुराहट थी। वो धीमे कदमों से चलकर छवि सिंघानिया के पास आया और हल्की स्माइल देते हुए कहा, आपके पास दिमाग नहीं है क्या जो आप मुझे एडवाइस मांग रही हो? जो करना है करो, बोलते हुए कबीर ने गौरवी जी की तरफ देखा और आगे कहा, दादी, कुछ लोगों को सक्सेस घर बैठे मिल तो जाती है, लेकिन उन्हें उसे मेंटेन करना नहीं आता। एक टाइम था जब सिंघानिया इंडस्ट्रीज का पूरे मुंबई में नाम था, और अब देखिए ना, एक एक करके सारे प्रोजेक्ट खुराना इंडस्ट्रीज को जा रहे हैं। मैंने तो ये तक सुना था कि 3 महीने बाद मुंबई में होने वाले अवार्ड फंक्शन की डील सिंघानियास के साथ साइन हो गई थी, फिर भी एन मोमेंट पर अब वो खुरानास को साइन करने के बारे में सोच रहे हैं। कबीर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा था, इसका मतलब खबर में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर छवि सिंघानिया गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी। बहुत टाइम बाद सिंघानिया इंडस्ट्री को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, और वो भी आरव उनसे छीनने जा रहा था। छवि गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, आरव मेरे साथ ये सब नहीं कर सकता, मैं उसकी माँ हूँ। अगर हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हमारी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। क्यों नहीं कर सकता? बेशक आरव तुम्हारे साथ ये सब कर सकता है, इनफैक्ट उसे तो इससे भी बड़ा करना चाहिए तुम्हारे साथ। तुम उसकी माँ नहीं हो, वो औरत हो जिसने उसे सिर्फ जन्म दिया है। सोचा था तुम्हें तुम्हारी हरकतों पर अच्छा जवाब दूंगी, लेकिन एज यूजुअल मेरा आरव कभी ये सब करने का मौका ही नहीं देता। वो पहले ही तुमसे निपटने के लिए तैयार रहता है। चलो कबीर, रूम में चलते हैं, मिसेस सिंघानिया को अपना डूबता हुआ बिजनेस भी तो संभालना है, गौरवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। छवि सिंघानिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्हें दिल ही दिल में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। कबीर और गौरवी जी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए तो वहीं उनके जाते ही छवि ने जल्दी से राहुल को कॉल किया। उसने राहुल से कॉल पर कहा, राहुल, मिस्टर मित्तल से बात करो और उनसे पूछो कि कहीं वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं करने वाले हैं ना। ये इंटरनेशनल अवार्ड शो है और यहाँ आने वाले सभी सेलिब्रिटीज की ड्रेस डिजाइन करने का मौका हमें मिला है। वो इस तरह हमारा काम आरव खुराना को नहीं दे सकते। और आपको ये किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो बस आपको गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। सुबह ही मैं मिस्टर मित्तल से मीटिंग में मिला हूँ और उन्होंने हमारे डिजाइन देखी थी। वो काफी इम्प्रेस भी हुए थे और उन्होंने लाइव सेलिब्रिटी वोटिंग करवाई थी। लगभग सबने हमें ही वोट दिया था। वहां जितनी भी डिजाइनिंग कंपनीज ने पार्ट लिया था उसमें सबसे ज्यादा वोट हमें ही मिले थे, राहुल ने बताया। सुबह उनकी एक मीटिंग थी, किसी वजह से छवि वो अटेंड नहीं कर पाई तो राहुल ने ही वो मीटिंग अटेंड की थी। राहुल की बात सुनकर छवि सिंघानिया ने राहत की सांस ली। फिर अचानक ही उसके मन में कुछ स्ट्राइक हुआ। फिर उसने तुरंत राहुल से पूछा, क्या उस मीटिंग में आरव भी था? नहीं, वो उस मीटिंग में नहीं था। मुझे भी सरप्राइज हुआ कि उसने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की। हो सकता है रिसेप्शन पार्टी की तैयारियों में बिजी हो। बहुत टाइम बाद बेचारे की लाइफ में कोई आया है, उससे पहले वो काम को प्रायोरिटी नहीं देगा, राहुल ने जवाब दिया। उसने आरव का मीटिंग में ना होने पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। राहुल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, पर छवि इतनी आसानी से सब इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसने राहुल को बाय बोलकर कॉल कट कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। छवि ने खुद से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग आरव मिस करते? जरूर कुछ ना कुछ बात है, मुझे आरव से बात करनी होगी। खुद से बातें करते हुए छवि सिंघानिया वापस पार्टी हॉल में आ गई थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे, इस वजह से ज्यादातर मेहमान वहां से जा चुके थे। आरव और आयु अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिनर ले रहे थे। छवि सिंघानिया को अपनी तरफ आता देखकर आरव ने इशारे से पहले ही उसे रोक दिया था। छवि वहीं पर रुक गई। आरव ने सबसे कहा, मैं बस 2 मिनट में आया। वो नहीं चाहता था कि छवि सबके सामने उससे बात करे। टेबल पर मौजूद बाकी लोग भले ही छवि सिंघानिया के उसकी माँ होने का सच जानते होंगे, लेकिन साक्षी और मंथन को अभी भी सच नहीं पता था।
वहीं छवि को वहां देखकर अयान ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली। आरव को छवि के पास जाता देख अयान ने अपने मन में कहा, पता नहीं मॉम की प्रॉब्लम क्या है, ये भाई को चैन से जीने क्यों नहीं देती। वहीं आरव छवि सिंघानिया के पास पहुंचा। उसने छवि के पास जाकर सख्त आवाज में कहा, 2 मिनट, एग्जैक्टली 2 मिनट का टाइम है, जो पूछना है जल्दी पूछो और निकलो यहाँ से। छवि भी बात को इधर उधर घुमाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने सीधे सीधे कहा, मुंबई में इंटरनेशनल अवार्ड्स होने वाला है 3 महीने बाद, सुबह उससे जुड़ी हुई मीटिंग थी, तुमने वो मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग तुम मिस कैसे कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, आरव ने भौंहें उठाकर कहा, आप होती कौन है मुझसे ये सब पूछने वाली। आरव खुराना अपनी मर्जी से चलता है, वैसे भी खुराना इंडस्ट्रीज सिंघानिया इंडस्ट्रीज की तरह कोई डूबती कंपनी नहीं है जिसे मीटिंग अटेंड करके कोई डील हासिल करने की जरूरत पड़े। आरव ने काफी एटीट्यूड से जवाब दिया, उसकी बातों में ही छवि के सवालों का जवाब छिपा हुआ था जिसे छवि समझ नहीं पाई। लिसन, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच तुमने आने की कोशिश, छवि आरव को धमकी दे रही थी, उसकी बात पूरी होती उससे पहले आरव ने अपनी घड़ी छवि के चेहरे के आगे करके कहा, तुम्हारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, सो जस्ट गेट लॉस्ट। अपनी बात कहकर आरव वापस डाइनिंग टेबल पर आ गया। उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी जो साफ बता रही थी कि छवि सिंघानिया को एक और नया झटका लगने वाला था। छवि गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। डाइनिंग टेबल पर वापस आते ही आरव ने कहा, आज का मील काफी अच्छा था, पता नहीं फिर हम सब कब और कहां मिले। वैसे भी साक्षी वापस दिल्ली जा रही है, मुझे नहीं लगता कि अब आसानी से हमारी मुलाकात वापस होगी, इस बार भी हम पूरे 3 साल बाद मिले थे। वो अपनी तरफ से साक्षी को एक अच्छा बाय बोल रहा था। आरव की बात सुनकर साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुंबई आना हुआ तो तुमसे जरूर मिलूंगी।
और मुझसे, आयु ने पूछा। साक्षी और मंथन पिछले 6 महीने से भी ज्यादा टाइम से मुंबई में ही थे। इस बीच आयु उनसे काफी बार मिल चुकी थी और साक्षी से काफी अटैच भी हो गई थी। साक्षी ने आयु की तरफ देखकर तीखे लहजे में कहा, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती, मैंने तुमका ट्रस्ट किया था और तुमने उसे तोड़ दिया। साक्षी ने सीधे सीधे अपनी बात को कह दिया। अयान मंथन और आयु डील से अनजान था, इसलिए उसे साक्षी का रवैया समझ नहीं आया। उसने साक्षी की तरफ देखकर कहा, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? आप सब लोगों के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा है कि आपको पूरी बात पता है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, वैसे भी इस टेबल पर मौजूद सभी लोगों को हम दोनों से जुड़ी हर एक बात पता है, आरव ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने आयु की तरफ देखकर कहा, यहाँ इस टेबल पर मौजूद हर शख्स को पता था कि ये अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मुझे समझती है। मुझे नहीं पता इसका साथ किसने दिया और किसने नहीं, पर सच ये है कि इसने मुझसे शादी इसीलिए की थी ताकि मुझे बर्बाद कर सके। इन शॉर्ट, ये कहूं कि ये अपनी बहन की मौत का बदला मुझे लेना चाहती थी। जब इसे पता चला कि मैंने इसकी बहन को नहीं मारा है, तो मैडम मुझे छोड़कर मंथन के साथ जाना चाहती थी। ये सब पहले ही दोनों ने प्लान कर रखा था। ये मिस्टर तो मेरे पास डाइवोर्स पेपर तक लेकर आ गए थे। आरव ने एक सांस में सारी बातें अयान को बता दी। अयान हैरानी से आयु की तरफ देख रहा था। अब तक आयु ने उसके पीठ पीछे इतनी प्लानिंग कर ली थी और उसे इस बारे में खबर तक नहीं थी। तभी मंथन ने गुस्से में कहा, सो वॉट, अगर इसे लगता था कि आपने अनु को मारा है तो उसमें गलत क्या था? लास्ट टाइम तो आपके साथ थी, हो सकता है आपने सबूत मिटा दिए होंगे और आपने ही उस रात अनु को पुश किया होगा। चलिए एक बार के लिए मान लेता हूँ कि आपने अनु को नहीं मारा। इसे सच पता चल गया तो सच पता चलने के बाद ही अपनी गलती सुधारने के लिए आपको छोड़कर भी जाना चाहे तो उसमें क्या गलत था? मंथन अभी भी ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि आयु ने जो भी किया उसमें कुछ गलत नहीं था। आरव ने सर्द निगाहों से आयु की तरफ देखा और कहा, मिस्टर मंथन आहूजा, अगर किसी इंसान ने गलती की है तो उसे मानने के बजाय बेशर्मी से खुद को सही साबित करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तुम लोग फिर से बहस करने लग गए, मुझे लगा था साथ आओगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों का झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, साक्षी ने गुस्से में कहा। फिर उसने आयु की तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। पता है पहले मुझे लगता था कि तुम मेरे भाई को अनु के जाने के गम से बाहर निकाल दोगी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि तुम चलती फिरती मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं। पहले खुद की ही बहन को नहीं बचा पाई, फिर मेरे भाई को मैनिपुलेट किया और अब आरव के साथ रहकर न जाने क्या कुछ और प्लान कर रही हो। साक्षी ने अपने गुस्से में आयु को काफी कुछ कह दिया था। टेबल पर माहौल गर्म होता जा रहा था। पहले आरव ने तो फिर साक्षी ने उसे सब हालातों का जिम्मेदार ठहरा दिया। आयु की आंखें नम होने लगी, वो जल्दी से वहां से उठी और दौड़कर बाहर चली गई।